आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अमन है और इस ऑडियो में हम क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 11 हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक निकालिए एंड ओपन करिए पेज नंबर 127। तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट ऑडियो में पढ़ा था ऑल अबाउट हर्ट, हमारे हर्ट के कितने पार्ट्स हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। उसी के साथ हमने हर्ट बीट्स के बारे में भी पढ़ा था, किस तरीके से हर्ट बीट करती है, और स्टेथोस्कोप डिवाइस की मदद से हम हर्ट बीट की साउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं। हमने एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करी जिसके थ्रू हम वेस्ट मटेरियल्स की मदद से एक स्टेथोस्कोप अपने ही घर पर खुद बना सकते हैं। आफ्टर दैट हमने न्यू टॉपिक पढ़ा, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, उसके क्या अलग अलग पार्ट्स हैं और उसका फंक्शन मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीजें हमने लास्ट ऑडियो में पढ़ी थी। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली यूरिन का रिमूवल होता है। यूरिन क्या है, वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, एक टॉक्सिक एलिमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, एंड उसका रिमूवल बहुत ही ज्यादा एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट है। नाउ हमने ये भी देखा डैट इन एन एडल्ट ह्यूमन जो नॉर्मली 24 आवर्स के अंदर 1-1.8 लीटर ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है और वो हमारी बॉडी से रिमूव होता है। हमारे यूरिन के अंदर 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वट वी हैव लर्नड इन अवर लास्ट ऑडियो। नाउ नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 127 यहाँ पर फिगर 11.8 बनी है, ठीक इसके नीचे लास्ट पैराग्राफ। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे, द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट। बोजू हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर व्हाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ, especially in areas like underarms. These marks are left by salt present in the sweat. अब आपने summer vacations में या फिर summer season में ये देखा ही होगा कि हमारी body sweating करती है, यानी हम उसे हिंदी में कहते हैं कि हमारी body के through पसीना बाहर आता है। गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, sweating होती है, English में हम इसे sweating बोलते हैं, और ये जो लिक्विड हमारी बॉडी से रिमूव होता है इसको हम स्वेट बोलते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है SWEAT। तो एक हॉट समर डे पे हम बहुत ही ज्यादा स्वेट करते हैं, स्वेटिंग करते हैं। ये जो स्वेटिंग है बेसिकली ये वाटर और सॉल्ट से मिलकर बना हुआ होता है। बोजो ने कई बार ये कंक्लूड करा, ये ऑब्जर्व करा कि गर्मियों के दौरान उनके कपड़ों के ऊपर व्हाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं, और ये पैचेस स्पेशली उन एरियाज में बनते हैं जैसे कि अंडर आर्म्स, ग्रोइन, ऐसे रीजन में ये पैचेस ज्यादा फॉर्म होते हैं। बेसिकली ये जो मार्क है ये सॉल्ट के मार्क्स होते हैं। जब स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने के बाद वो स्वेट हमारे कपड़ों पे लगता है, और जब ये स्वेट में से सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो जो सॉल्ट होते हैं वो हमारी क्लोथ के ऊपर ही रह जाते हैं और व्हाइट कलर के पैचेस फॉर्म हो जाते हैं। Does sweat serve any other function? क्या sweating कोई special function perform करता है? We know that the water kept in an earthen pot मटका is cooler. This is because the water evaporates from the pores of the pot which causes cooling. अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि मटके के अंदर जो घड़ा होता है, मिट्टी का जो मटका होता है उसके अंदर पानी हम रखते हैं, वो पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, शीतल जल में से कह सकते हैं। ये ठंडा पानी इस वजह से होता है बिकॉज मटके के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स के थ्रू जो अंदर का पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने की वजह से अंदर जो पानी पड़ा हुआ है वो ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और ये शीतल जल हम बहुत ही आसानी से पी सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया है जो एक मटके के अंदर होता है। सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। ठीक उसी तरीके से जब हमारी ह्यूमन बॉडी भी कभी स्वेट करती है, हमारी बॉडी के थ्रू भी स्वेटिंग होती है, तो इसकी मदद से भी हमारी बॉडी कूल रहती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रहता है। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है हमें समर के दौरान। नाउ ऑन द पेज नंबर 127 देयर इज ब्लू बॉक्सेस एट द बॉटम ऑफ द पेज, प्लीज रीड इट। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस excrete cell waste as ammonia which directly dissolve in water. अब जैसा कि यहाँ लिखा है कि हर एक एनिमल का अपना अलग वे है, अपना अलग प्रोसेस है कि वो केमिकल्स को, वेस्ट पार्टिकल्स को या फिर वेस्ट सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी से किस तरीके से रिमूव करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है, फॉर एग्जाम्पल फिशेस, ये अपनी बॉडी से अमोनिया की फॉर्म में अपने सेल वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं और ये डायरेक्टली वाटर के अंदर एक्सक्रीट कर देते हैं। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड व्हाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड। इसी तरीके से जो बर्ड्स होते हैं, अलग अलग लिजर्ड्स वगैरह होते हैं या फिर स्नेक्स होते हैं, ये एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से जो कि यूरिक एसिड का होता है और ये व्हाइट कलर का होता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया। और उसी के कंपैरिजन में अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है डैट इज यूरिया, जो कि हमारे यूरिन में 2.5% प्रेजेंट होता है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। नाउ नेक्स्ट बॉक्स, sometimes a person's kidney may stop working due to infection or injury. Now again, सोच के देखिए, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज प्रेजेंट हैं, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि कोई सेल डैमेज हो जाए, कोई टिश्यू डैमेज हो जाए, या फिर कभी हमारी मसल डैमेज हो जाती है, कभी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, या फिर हमें और भी कई तरह के इंजरीज या फिर इन्फेक्शन हो जाते हैं। हमारी ह्यूमन लाइफ में ये पॉसिबल है अलग अलग तरह के डिजीजेस हमें लगना। ठीक उसी तरीके से कभी, यानी कई बार ऐसा हो जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स की जो किडनीज होती है वो इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी इंजरी की वजह से खराब हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर, जिसको हम किडनी फेलियर बोलते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। अब किडनी फेल हो गई, वो काम नहीं कर रही, तो ऐसे केस में क्या होगा? नॉर्मली किडनी का काम होता है कि ये हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूव करवाती है, लेकिन अगर किडनी फंक्शन नहीं करेगी, किडनी फेल हो जाएगी अपने काम करने में, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूव नहीं करवा पाएगी। अगर ये रिमूव नहीं करवाएगी तो ये वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। सच पर्सन्स कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। और ऐसे पेशेंट्स का जो ब्लड है वो फिल्टर नहीं होगा, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल जम जाएंगे, उसी के अंदर बार 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 सर्कुलेट करते रहेंगे। एसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर हो। जब तक ऐसे पेशेंट्स का ब्लड पीरियोडिकली फिल्टर नहीं होगा किसी आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है, दैट इज आर्टिफिशियल किडनी। इस टाइप के प्रोसेस को हम डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस में क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियल किडनी होती है, आर्टिफिशियल एपरेटस की मदद से हम किडनी बनाते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर, जिनकी किडनी फेल है उनकी बॉडीज के अंदर ये ब्लड को फिल्टर करती है और नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन रखती है। तो इस तरीके से किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स में ब्लड फिल्टर होता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर किस तरीके से सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है. हमने अब तक ह्यूमंस के बारे में पढ़ा, नाउ इट्स ऑल अबाउट प्लांट्स. इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीफ. जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा कि जो प्लांट्स या पेड़ पौधे होते हैं वो वाटर और अलग अलग मिनरल न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से लेते हैं, किसके थ्रू, अपने रूट्स के थ्रू, और वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट और टू ईच एंड एवरी लीफ ऑफ द प्लांट. द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अभी जो लीफ होती है ये वाटर की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्लांट्स बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड को प्रिपेयर करती है. यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10 डैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. हमने ये भी पढ़ा कि जो फूड है वो ओनली सोर्स है एनर्जी का, यानी उसी की मदद से हमें एनर्जी मिलती है. और हर एक सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ईच एंड एवरी सेल एनर्जी गेट करता है, उसे एनर्जी मिलती है जब वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है. यानी दिस इज द ओनली प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कैन गेट एनर्जी. द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. देयरफोर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल to every cell of an organism. Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the root are transported to the leaf? Now, a very important question. Basically, हमारे हर एक cell को food चाहिए और ये food को available कराना हमारे हर एक cell को बहुत ही ज़्यादा important है, ताकि वो energy generate करें और उस energy को अपने अलग अलग functioning में utilize करें. नो, क्या कभी आपने सोचा है कि ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो कि रूट्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, ये किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट लीफ, फ्रूट, फ्लावर्स तक ये ट्रांसपोर्ट होता है. हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ कैरीड टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड. और ठीक उसी तरीके से लीफ के अंदर जो खाना बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फूड भी बाकी डिफरेंट पार्ट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रूट्स तो एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर मिनरल्स को, लेकिन लीफ तक वो ट्रांसपोर्ट करवाती है. और लीफ अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन वो उस फूड को अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं. तो ये ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से पॉसिबल होती है, तो चलिए इसके बारे में अब हम डिटेल में समझते हैं. नाउ द टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड minerals. Plants absorb water and minerals by the roots. जो हमारे plants है वो water और minerals को absorb करते हैं roots के through, जो कि soil में present होती है. The roots have root hair. हमारी जो roots होती है, roots के ऊपर छोटे छोटे root hair present होते हैं. The root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and mineral nutrients dissolve in water. The root hair is in contact with the water present between the soil particles. जैसे कि आप फिगर 11.7 ए पार्ट में देख सकते हैं. इन दिस यहां पर आप ब्लू कलर का एक वेव सी देखेंगे, एक पाइपलाइन से आपको दिख रही होगी, दैट इज ऑफ ब्लू कलर. ठीक इसके बाहर छोटे से रूट हेयर प्रेजेंट है. आप बाहर अगर आप देखेंगे एक टेल की तरह हेयर टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम रूट हेयर बोलते हैं. ये रूट हेयर हमारी सॉइल के अंदर पहली बात रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, जब रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन और भी अच्छी और भी ज्यादा होती है। ये रूट जब एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का या फिर मिनरल्स का तो ये एक चैनल बना देता है। जिस तरीके से रूट हेयर से ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है अंदर जाइलम वेसल्स तक, ठीक इसी प्रकार रियलिटी में रूट्स का हाई सरफेस एरिया के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है और ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि वाटर में डिजॉल्व है और सॉइल के अंदर प्रेजेंट है ये सभी सॉइल के अंदर एंटर कर जाते हैं। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव फ्रॉम द रूट टू द लीफ? नाउ अनदर क्वेश्चन इज कि किस तरीके से जो वाटर है वो हमारी जड़ों से पेड़ पौधों के रूट से उनके डिफरेंट पार्ट्स डेट इज लीफ तक ट्रांसपोर्ट होता है, वो मूव करता है। हमने ये तो पढ़ लिया कि किस तरीके से रूट एब्जॉर्ब करते हैं और रूट हेयर से वो अंदर तक एंटर होता है, जो भी हम वाटर या फिर मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल में प्रेजेंट है। लेकिन ये जब रूट इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है तो रूट इन्हें फर्दर आगे किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करवाती है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स? यानी एक और क्वेश्चन कि हमारे प्लांट्स के अंदर किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है? आप फिगर 11.7 में देखिए, डेट इज बी पार्ट। यहां पर एक ट्री आपको दिखाई दे रहा होगा। ट्री के ठीक नीचे अगर आप ब्लू कलर में देखेंगे तो ये ब्लू कलर आपको रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंट सॉइल के अलग अलग पोर्शन से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिटिव एलिमेंट है उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो आप रेड कलर के एरोज देख रहे हैं वो ये रिप्रेजेंट करता है कि लीफ जो भी फूड प्रिपेयर कर रही है वो फूड उसके हर एक पार्ट तक ट्रेवल कर रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हमारे प्लांट्स में ट्रीज में अकर करता है। नाउ यहां पर ट्रीज के डायग्राम के ऊपर ठीक ऊपर एक क्लाउड शेप में एक बॉक्स बना हुआ है, चलिए इसे रीड करते हैं। बोजो थिंग्स दैट प्लांट्स मे हैव पाइप टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट लाइक वी हैव इन आवर होम्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। बोजो सोचता है कि पेड़ पौधों के अंदर पाइप प्रेजेंट होती है, उनके अंदर पाइपलाइंस बिछी होती है उनकी पूरी बॉडी में जिसके थ्रू वाटर और अलग अलग सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जिस तरीके से हमारे घरों में पाइपलाइंस बिछी हुई होती है पानी की, ठीक उसी तरीके से ट्रीज के अंदर प्लांट्स के अंदर भी वाटर की सप्लाई के लिए इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाइप्स के थ्रू होता है और पाइप्स उनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये इन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे प्लांट्स और ट्रीज के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब इसकी डिटेल आपको आगे दे रखी है। वेल भोजो इज राइट, प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो अभी अभी जो भोजो ने बताया कि शायद प्लांट्स के अंदर भी पाइपलाइंस होगी जैसे हमारे घर के अंदर होती है वाटर की सप्लाई के लिए, तो भोजो बिल्कुल सही सोचता है, ही इज राइट। जो हमारे प्लांट्स है उनके अंदर भी पाइप लाइक वेसल्स प्रेजेंट होती है जिसकी मदद से वाटर और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी सॉइल में प्रेजेंट है वो हमारे प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। The vessels are made of special cells. ये जो vessels plants के अंदर present है ये बहुत ही special type के cell से बनी होती है forming the vascular tissue और ये एक vascular tissue बनाती है। A tissue is a group of cells that perform specialized function in an organism. Now what is tissue? Tissue cell का एक group होता है जो कि specialized function, special type के function perform करता है, वर्क करता है अपना किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। द वास्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम। वो वास्कुलर टिश्यू जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारे प्लांट्स के अंदर, हम इसको बोलते हैं जाइलम। प्लीज आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, that xylem is the vascular tissue for the transport of water and nutrients in the plant. As you can see in figure 11.7 A part, वहां पर xylem vessels present थी. Next, the xylem forms a continuous network of channels that connect roots to the leaf through the stem and branches and thus transports water to the entire plant. जैसा कि यहां लिखा है कि जो xylem है वो एक continuous channel बनाता है, network of channel, यानी एक network type वो उनकी body के अंदर form करता है जो roots को, leaf को और even अलग अलग parts को plant के अंदर connect करके रखते हैं through the stem and branches. और इसी की मदद से water का हमारी पूरे plant के अंदर transportation होता है. पहेली says, her mother puts ladyfinger and other vegetables in water. If they are somewhat dry, she wants to know how water enters into them. अब पहेली पूछती है कि मेरी मदर कई बार ladyfinger या फिर अलग अलग vegetables अगर उनमें पानी की कमी है तो वो क्या करते हैं, उसे पानी में रख देते हैं. अगर वो ड्राई सब्जियां हो, सूखी सब्जियां हो, ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब करके दोबारा से फ्रेश हो जाए. यू नो डैट लीव सिंथेसाइज फूड, द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब हमें पता है हमारे प्लांट्स के अंदर लीव्स प्रेजेंट है. ये लीव फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट बॉडी के अंदर फूड प्रिपेयर करती है. Now this food is essential to each and every part of the body. ये food plants की body के अंदर transport होता है by a special mechanism. This is done by the vascular tissue called the phloem. Now plants body के अंदर एक special vascular tissue present है, that is phloem. Phloem का काम है कि ये plant body के अंदर food को transport करवाता है. Thus, xylem and phloem transport substances in plants. So basically, हमारे पेड़ पौधों के अंदर दो तरह के vascular tissue present है. One is xylem and another is phloem. Xylem का काम है कि ये water और nutrients का transportation करवाता है. And phloem का काम है कि ये food, जो कि leaf prepare कर रहे हैं, उनका transport करवाता है. Now, there is an activity 11.3. We would require a glass, tumbler, water, red ink, a tender herb, example balsam, and a blade for this activity. अब हमें इस एक्टिविटी के लिए कुछ टाइप के apparatus चाहिए. हमारी requirement है, हमें एक glass tumbler या फिर एक beaker चाहिए, water, red color की ink, a tender herb, example balsam, यानी एक हमें herb plant चाहिए, and a blade for this activity. और इस activity के लिए हमें एक blade भी चाहिए होगा. Pour water to fill 1/3 of the tumbler. आपने क्या करना है, tumbler या फिर beaker के अंदर एक तिहाई हिस्सा पानी से fill कर देना है. Add a few drops of red ink to the water. इस पानी के अंदर आप red color की ink की थोड़ी सी drops add कर दीजिए, ताकि जो water है वो red color का हो जाए. Cut the base of the stem of the herb. Now, जो आपके पास herb present है, इसके stem की base को cut कीजिए and place it in the glass और इस herb को glass के अंदर रख दीजिए as shown in figure 11.8 A part. You can see figure 11.8 part number A, stem placed in colored water. Colored water के अंदर यहाँ पर हमने stem को place कर दिया है. ठीक इसी तरीके से आपने भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है. कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर. ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे, आपने अगले ही दिन इसको ऑब्जर्व करना है. डस एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड, क्या हर्ब का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट आपको रेड कलर का ऑब्जर्व होता है? इफ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर. अगर दिस इज पॉसिबल, अगर ऐसा होता है कि प्लांट का कोई भी आपको पार्ट रेड कलर का दिखता है, तो ऐसा क्यों है? ये रेड कलर प्लांट के हर पार्ट तक किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हुआ? यू कैन कट द स्टेम अ क्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। आप स्टेम को कट करिए और उसके अंदर आप रेड कलर फाइंड करिए कि कहां पर स्टेम के अंदर रेड कलर प्रेजेंट है। एज यू कैन सी इन फिगर 11.8 बी पार्ट एंड सी पार्ट। जैसे कि सी पार्ट में आप ग्रीन कलर की स्टेम में छोटे छोटे रेड कलर की डॉट्स देखेंगे। एक्चुअली ये हमारी वेसल्स है, डेट इज जाइलम एंड फ्लोएम। यहां पर रेड कलर इसीलिए है बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के थ्रू ये रेड कलर हमारे वाटर में से एब्जॉर्ब होकर प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो गया थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम, डेट इज वास्कुलर टिश्यू। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी डैट वॉटर मूव अप द स्टेम। इन अदर वर्ड, स्टेम कंडक्ट्स वॉटर। जस्ट लाइक द रेड इंक, मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन वॉटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम अलॉन्ग विद वॉटर। जैसा कि हमने इस एक्टिविटी में देखा, इस एक्टिविटी से ये पता लगता है कि जो हमारी स्टेम है वो वॉटर को ऊपर की तरफ मूव करवाती है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो स्टेम वॉटर को कंडक्ट करवाती है, इट कंडक्ट्स वॉटर। जस्ट लाइक द रेड इंक, जिस तरीके से स्टेम ने रेड इंक को कंडक्ट करवाया, उसे ऊपर की तरफ मूव कराया, ठीक उसी तरीके से ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट जो अलग अलग मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स है उनको भी ये ऊपर की तरफ मूव करवाती है टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। वॉटर एंड मिनरल्स गो टू लीफ एंड अदर प्लांट पार्ट्स थ्रू नैरो ट्यूब्स जाइलम इनसाइड द स्टेम। जो वॉटर और मिनरल्स हैं वो हमारी स्टेम के अंदर जाइलम नाम के वस्कुलर टिश्यू के थ्रू मूव करती है। आपने फिगर 11.7 में देखा था, हमने देखा था कि वहां पर जो जाइलम है वो सॉइल से जितने भी अलग वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनको वो ट्रांसपोर्ट करवा रही है टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। और उसी के रिस्पेक्ट में जो दूसरा वस्कुलर टिश्यू है, डेट इज फ्लोएम, फ्लोएम ये क्या करता है, आप इसे फ्लोएम या फिर फ्लोएम भी कह सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे लीफ से जो भी फूड प्रिपेयर्ड है उसको प्लांट के हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करवाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म इन अवर प्लांट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपीरेशन। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड दैट प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। हमने क्लास 6 में ये पढ़ा था ट्रांसपीरेशन के बारे में कि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही सरप्लस अमाउंट में वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, उसको रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में बाय ए प्रोसेस नोन एज ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल के थ्रू अलग अलग मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। अब प्लांट्स तो बहुत अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन ये जितना भी वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं ये सारा का सारा प्लांट्स यूटिलाइज नहीं करते, यानी बहुत ही अमाउंट में वाटर बच जाता है उनकी बॉडी में। द वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। अभी जो एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट है ये क्या होता है, प्लांट्स के लीफ के ऊपर स्टोमेटा नाम की छोटी छोटी टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। इन्हीं ओपनिंग्स के थ्रू ये जो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट बॉडी में प्रेजेंट है ये सारा का सारा इवेपोरेट हो जाता है, उनकी बॉडी से रिलीज हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ट्रांसपीरेशन। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ जनरेट अ सक्शन पुल द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। जब पानी का इवेपोरेशन उनके लीफ से होता है तो ठीक उस टाइम पे एक टाइप का सक्शन प्रोड्यूस होता है, एक खिंचाव पैदा होता है प्लांट के नीचे पार्ट से ऊपर पार्ट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्ट्रॉ की मदद से पानी या कुछ भी लिक्विड पीते हैं तो एक टाइप का सक्शन क्रिएट होता है जिसकी वजह से नीचे से जो भी लिक्विड है वो स्ट्रॉ के अंदर एंटर करता है और वो आपके माउथ तक पहुंचता है। ठीक उसी तरीके से जब लीव के ऊपर से पानी एक्सेस अमाउंट में इवेपोरेट होता है तो एक टाइप का सक्शन क्रिएट होता है। इस सक्शन की मदद से नीचे के भाग से जितना भी वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। नाउ दिस सक्शन कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। और ऐसे ही लंबे लंबे बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ों में इसी सक्शन की मदद से जो पानी है वो निचले पार्ट्स के उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू ऊपर की तरफ मूव करता रहता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। और ये जो ट्रांसपिरेशन है ये प्लांट्स को कूल करने में भी मदद करता है, उसके टेम्परेचर को लोअर डाउन करता है। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है, हमारी बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, हमारी बॉडी कूल रहती है। ठीक उसी तरीके से प्लांट्स में जब एक्सेस अमाउंट में वाटर रिमूव होता है, इवेपोरेट होता है, तो उनकी बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर कम हो जाता है और कूल टेम्परेचर उनकी बॉडी में मेंटेन रहता है। तो ये ट्रांसपिरेशन के दो फंक्शन है, पहला रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड सेकेंड टू लोअर डाउन द टेम्परेचर ऑफ प्लांट बॉडी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक ट्रांसपिरेशन। नाउ आपका चैप्टर नंबर 11 खत्म हो गया है। हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज नेक्स्ट ऑडियो में डिस्कस करेंगे। इस ऑडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।